एकदम आपको होश आ जाए उसी समय कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोध आप कंट्रोल कर सकते हैं। और क्रोध प्रकट करने के बाद होश आए, आता ही है सबको। विस्फोट होने के बाद तो आवाज सबको सुनाई देती है भाई, विस्फोट होने के पहले ही उसको क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी लोग जो बारूदी सुरंग वगैरह लगा देते हैं उसको पहले ही डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल अंग्रेजी में उसको डिसमेंटल बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कि मानो उसको वहीं पर सब कनेक्शन उसके तोड़ दो। तो फिर बस ये सिलसिला अगर प्रारंभ हो जाए, आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि अगर तुम्हारे में कठोर तपस्या करने की शक्ति नहीं है तो हम तुम्हें दबाव डालकर ये नहीं कहना चाहते कि तुम करो, जबरदस्ती करो, बोले उपवास करो, नहीं कर सकते तो भी करो, बोले प्राण निकल जाएंगे और क्या होगा, ऐसा नहीं बोलते हम। बोले कि तुमसे अगर उपवास नहीं बनता मत करो, लेकिन गुस्से को तो काबू में रख सकते हो, अहंकार को तो छोड़ सकते हो, छल कपट से तो बच सकते हो, और लोभ लालच से भी तो दूर रह सकते हो, तो इतना कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अगर कषायों के वशीभूत हो गए तो अपाणम हणदि अपेण, अपना ही अपने द्वारा हनन होगा, इसी का नाम तो आत्मघात है। इसलिए कषाय को भी छोड़ना अपेक्षित है। इस तरह स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कुमार कार्तिकेय मुनि द्वारा रचित 31 गाथाओं पर्यंत जो अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन था वो आज यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे संसार अनुप्रेक्षा है, कार्तिकेय मुनि द्वारा रचित यह 12 अनुप्रेक्षाएं स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम से जानी जाती हैं। इस पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने जो टीका लिखी है वो आगास से प्रकाशित संस्कृत टीका, मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, जिस भाषा में नमोकार मंत्र है, चक्तारी मंगलम है। तो इसमें अपन ने अभी तक के अनित्यानुप्रेक्षा और अशरण का चिंतन किया। अनित्य यानी संसार में सब नश्वर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, तो स्थायित्व की आकांक्षा रखकर या आशा रखकर संसारी प्राणी दुखी होता है। जब उससे विपरीत घटना होती है तब, तो इसलिए कहते हैं कि पहले से ही इस बात को समझ लो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार मरना सबको, सबको पर थोड़ा वजन देना, उसको उड़ा मत देना हल्के से, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये तो जीवन मरण की बात हुई, बाकी जो अन्य पदार्थ हैं सांसारिक सुख धन संपत्ति इष्टजनों का संयोग मित्रजन रिश्तेदार ये सब भी क्षणिक है, आज है और कल का कोई भरोसा नहीं है। सवेरे जिस घर पर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, दोपहर को वहीं से रोने चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है, माने जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पुण्योदय भी क्षणिक है, किसी समय उदय में रहता है, फिर पाप का उदय आ जाता है तो पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर कभी पुण्य का उदय आता है, ये भी पुण्य पाप का चक्र हमेशा जारी रहता है। इसलिए इस भ्रम में कभी नहीं जीना चाहिए कि फलानी चीज़ या फलाना व्यक्ति मेरा लंबा साथ दे सकेगा या देगा, कुछ भी ठिकाना नहीं। अपने ज्ञान से अपने को क्या पता कब क्या हो जाए, सब कुछ क्षणिक है, अनित्य है। फिर अशरण में बताया था कि मौत से बचाने वाला कोई नहीं है, जिस समय आयु नष्ट होती है, आयु पूर्ण होती है, उस समय कोई भी किसी का रक्षक नहीं हो सकता। यदि देवताओं में वो शक्ति होती तो देवता अमर होते, लेकिन देवता भी अमर नहीं है तो वो किसी और को कैसे मरने से बचा सकते। जो खुद मरने वाला है वो दूसरों को जीवन कैसे दे सकता है। हाँ, जब तक पुण्य का उदय है, जब तक आयु कर्म है, तब तक औषधोपचार और अन्य उपाय कार्यकारी होते हैं, काम में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ आयु क्षीण हो जाती है, वहाँ पर कोई ताकत मरने से बचा नहीं सकती। फिर भी संसार में रक्षक धर्म है। संसार में भटकने वाले जीव का एकमात्र रक्षक धर्म है, और वह धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। इसलिए अंत में आचार्य श्री ने कहा था कि परम श्रद्धा है सेवे है, उस धर्म की उपासना परम श्रद्धा अर्थात सम्यक के साथ करो। और अन्नम किम पिण शरणम, और किसी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कोई भी मरने से बचाने वाली ताकत न है, न थी और न आगे कोई संभावना है। आचार्य शुभचंद स्वामी जो ज्ञानाणु ग्रंथ के रचयिता, उन्होंने तो कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां मरने से बच सको तो चले जाओ, भले वो चांद क्यों न हो, वहां पहुंच जाओ। अगर वहां मौत ना आती हो तो चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, समुद्र के नीचे चले जाओ। लेकिन बड़े बड़े विद्याधर, बड़े बड़े देव और स्वर्गों के इंद्र भी, और स्वर्ग से ऊपर जो देवताओं के विमान हैं, वहां के अहम इंद्र भी जब मृत्यु को नहीं टाल सके, तो फिर मनुष्य जैसे छोटे प्राणी की शक्ति क्या काम कर सकती है। हाँ, एक रास्ता है, यदि जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर ले तो उसको जन्म ही नहीं धारण करना पड़ेगा, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। बस ये एकमात्र रास्ता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मृत्योर विभीष किम मूढ़ भीतम मुंचति किम यमः, अजातन नैव गृह्णाति कुरु यत्न मजन्मनि। हे मूर्ख प्राणी, तू मरने से डरता क्यों है? क्या डरने वाले को मौत छोड़ देती है? ध्यान से सुनना इस बात को, आजू बाजू ध्यान मत देना। क्या कहा? हे मूर्ख प्राणी। अब आप बोलोगे कि मैं प्राणी थोड़ी हूं, मैं तो इंसान हूं। इंसान भी एक संसारी प्राणी है, ये मत भूल जाना। हे मूढ़ प्राणी, तू मरने से क्यों डरता है? क्या डरने वाले को मृत्यु छोड़ती है? फिर प्रश्न उठता है कि फिर छोड़ती किसको है मृत्यु? अजातन नैव गृह्णाति, जो जन्म धारण नहीं करता बस उसी को मृत्यु छोड़ती है। इसलिए अजन्मनी यत्नं कुरु, कहते हैं कि कोई ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे जन्म न लेना पड़े। कितनी सुंदर बात है। तो बस इसके सिवा कोई चारा नहीं है। काल जयी एक सिद्ध परमेष्ठी, अरंत भगवान को भी अपनी आयु पूर्ण करके यहां से जाना पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान की जब एक माह आयु शेष रही तब सम्यक शिखर जी चले गए, समवसरण छोड़ दिया, उपदेश बंद कर दिए, और वहां जाकर योग निरोध आदि प्रक्रिया करके मोक्ष चले गए। मोक्ष सप्तमी के दिन, कल ही है वो दिन। मोक्ष सप्तमी का दिन कल का ही दिन है। चले गए वो मोक्ष। अब कभी भी उनका स्पर्श मृत्यु नहीं कर सकती। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। गीता में एक श्लोक आता है कि जन्मे हुए का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। पर जो कर्मों को जीत कर अपनी आयु पूर्ण कर लेता है, अर्थात अरहंत पद धारण करके फिर मनुष्य पर्याय से छूटता है, वो अमर हो जाता है। और अमर होने का सिर्फ एक स्थान ये मनुष्य पर्याय है, और कहीं भी कोई अमर नहीं हो सकता। इस मनुष्य पर्याय में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अर्थात आठों कर्मों का क्षय किया जा सकता है, और कहीं भी कोई जगह नहीं है। मनुष्य की 84 लाख योनियों में से केवल 14 लाख योनियां होती है। एक योनि नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो 84 लाख योनियों में अपन भटके, एक मनुष्य योनि अब मिली है। वो एक नहीं है, मनुष्य योनि जो है 14 लाख है। बाकी जो योनियां हैं, बाकी कितनी बची? 70 लाख। वो 70 लाख योनियां बाकी तीन गतियों से संबंध रखने वाली है। मनुष्य गति की 14 लाख योनियां होती है, लेकिन वो मनुष्य अलग अलग स्थानों के विभिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। कई सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, कई भोग भूमि से संबंध रखने वाले होते हैं, कई कर्म भूमि से संबंध रखने वाले होते हैं। तो मनुष्य के भेद प्रभेद बहुत सारे हैं। तो इस मनुष्य पर्याय में अगर मोक्ष पुरुषार्थ कोई कर ले और मुक्त हो जाए, सफलता प्राप्त कर ले, या अभी शुरू कर दे, कभी भी प्राप्त करे सफलता, काम तो शुरू हो जाए, तो फिर कुछ हो सकता है आगे। अगर आप सोचो कि भाई अभी नहीं, इस जीवन में तो नहीं, अभी तो बहुत सारे हमारे दूसरे जरूरी काम हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे भी जरूरी दूसरे काम हैं, तो उनको पहले निपटा लो। पर ये याद रखना कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो अपन ने ना किया हो, और एक बार नहीं, कई कई बार अपन वो सब काम कर चुके हैं जो आज अपन जरूरी समझ कर करते चले जा रहे हैं। वो सब संसार भ्रमण में कौन सा दिन नहीं देखा अपन ने, कौन सा सुख नहीं देखा, कौन सा दुख नहीं देखा, सब कुछ कर चुके हैं अपन, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ भोग चुके हैं। तो अगर ऐसा लगता हो कि भाई कुछ बाकी रह गया है, तो आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है। केवली भगवान से पूछोगे तो बोलेंगे कि कुछ भी बाकी नहीं है, तू मोह के कारण कह रहा है कि ये बाकी है, तू छोड़ना नहीं चाहता इसलिए कह रहा है कि ये काम बाकी है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो कर लिया तूने, क्या नहीं खाया, क्या नहीं पिया। आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है कि एक एक प्राणी ने जितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया है, उनको अगर संचित किया जाए, उनका एक ढेर लगाया जाए, तो विंध्याचल पर्वत उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। और एक एक प्राणी के जितने रिश्तेदार बने हैं संसार में भटकते भटकते, जन्म जन्मांतरों के, उन रिश्तेदारों की गिनती के आगे समुद्र के रेत के कण कम हैं। समुद्र में जितने बालू के कण हैं ना, रेत के बारीक, वो कम हैं। अपने एक एक के रिश्तेदारों के सामने इतने रिश्तेदार बना चुके हैं, क्या बचा है? फिर भी मोह के कारण, अपने अंदर ये मोह सबसे बड़ा दुश्मन है, अपना अंदर बैठा हुआ वो अपने को संसार में बार बार परेशान कर देता है। और जब गुरु की बात सुनने मिलती है, तब लगता है कि अब मोह को मैं जीतूं, पर फिर वो मोह किसी दूसरे रूप में आकर के कहता है कि ठीक है, गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन घर में रह करके भी और फिर ये सब छोड़े बिना भी कोई रास्ता निकलता है? ऐसा रास्ता, थोड़ा लंबा है, चक्कर है, लेकिन है रास्ता भी। तो ऐसे कहीं ना कहीं फुसला कर, मन बहला करके वो फिर से विचलित कर देता है, और पुनः एक अनमोल मनुष्य पर्याय चली जाती है। दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त करना आसान नहीं है। कितना कठिन है तो जुग समिला संजोगे। मूलाचार में एक गाथा आती है, लवण समुद्र जहा चेव। जैसे लवण समुद्र में दो तट है समुद्र के, एक ये तट जो अपनी तरफ है, एक वो तट जो उस तरफ है। अब एक तरफ ये हल जो होता है ना, किसान लोग चलाते हैं खेत में, उसका एक भाग डाल दो और दूसरी तरफ उसका दूसरा भाग डाल दो, इन दोनों का मिलन कितना कठिन है? असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये याद रखना, असंभव नहीं है, लेकिन संभव होते हुए भी कितना कठिन है इस पर विचार करो। एक तट पर एक हिस्सा है हल्का और दूसरे तट पर दूसरा हिस्सा है, जुग और समिला बोलते हैं उसको, दो भाग हल्के, इनका संयोग जिस प्रकार दुर्लभ है उसी प्रकार संसार में भटकने वाले प्राणियों को मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो एक जीवन खो देना, खोना सरल है, पाना मुश्किल है। इसलिए खोने के पहले सोच लेना कि दोबारा कब पाऊंगा। तो इस तरह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए अपन यहां तक आए थे। आज नेमिनाथ भगवान की जयंती है। अपराजित पर्याय से उन्होंने जो पुरुषार्थ प्रारंभ किया, जब उनको समाचार मिले कि पिताश्री ने मुनि पद धारण करके निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो संकल्प किया कि मैं भी उनके दर्शन बिना भोजन नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ऐसी जिद पकड़ लेता है। 8 दिन तक भोजन नहीं हुआ और कैसे हो सकता था? अब वो सिद्ध वापस अरहंत बन करके आएंगे क्या दर्शन देने? श्वेतांबर मत में महावीर स्वामी चंदन बाला के पास आए थे मोक्ष जाने के बाद। 84 अच्छेड़े हैं श्वेतांबर मत में, तो उन 84 अच्छेड़ों में बहुत सारी ऐसी विचित्र बातें हैं, पर उनका कहना ये है कि इनके बारे में प्रश्न नहीं छेड़ना, ये अच्छेड़े हैं, मतलब इनके बारे में प्रश्न नहीं छेड़ सकते आप, जो लिखा है सो मानो, कोई तर्क नहीं करना। लेकिन कैसे मानो ये बात समझ में नहीं आती। क्या मोक्ष का ऐसा स्वरूप है कि वहां से कोई वापस आ सके? ये किसी पर आक्षेप नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा पर अपन विचार कर रहे हैं। जो सत्य है वो सर्वत्र सत्य है, जैसे गीता का ये वाक्य, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जन्मे हुए का मरण निश्चित है, तो ये जैन होने के कारण अपन नकार नहीं सकते। नकार सकते हैं क्या? जन्मे हुए का मरण निश्चित है, इस बात का कौन निषेध कर सकता है? तो कुछ बातें तो अकाट्य है, सर्वत्र, उनको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जिनका किसी भी संप्रदाय में खंडन नहीं हो सकता, वो सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं। निर्वाण का स्वरूप ही ऐसा नहीं बन सकता कि वहां से कोई आ जाए वापस, लेकिन खैर ठीक है, मान्यता है, उस पर अपन क्या कह सकते हैं, सब स्वतंत्र है, जिसको जो मानना है उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 7 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है कि धर्म की स्वतंत्रता होगी भारत के नागरिक के पास, उसको जो धर्म पालना हो अपनाना हो उसकी मर्जी है, किसी का उस पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो ठीक है, पर अपराजित ने ये जिद पकड़ ली कि मुझे दर्शन करना अपने पिताजी का, मोक्ष चले गए उसके पहले मेरे जो दर्शन नहीं हुई, मुझे दर्शन करना। 8 दिन हो गए आहार नहीं कर रहे, तब फिर देवताओं ने विक्रिया करके दर्शन करा दिए क्योंकि उसकी जो लगन थी वो देख करके देवताओं को लगा कि भाई ठीक है, इसको अपन एक माया से ही चलो दर्शन करा देते हैं, करा दिए दर्शन। और फिर उसके बाद जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो उसने फिर धीरे धीरे इस तरफ कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और फिर कदम बढ़ाते बढ़ाते जब अंतिम पर्याय में आने को हुए, तब तक उन्होंने जो पुरुषार्थ किया था अपनी पिछली पर्याय, मुनिपद धारण करके गुरु के चरणों में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और 16 कारण भावनाओं को भाया था, तीनों जगत में खलबली मचाने वाली तीर्थंकर नामक उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति को भी उन्होंने उस समय संचित किया था। और फिर जब आयु पूर्ण होने का समय आया तो पूर्ण 33 सागर की आयु लेकर के वो अपराजित विमान में उत्पन्न हुए थे। अपराजित विमान जो है देवों का एक अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तरों में एक अपराजित विमान। और अपराजित विमान में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, और कई ऐसे जीव होते हैं जो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अभी कुछ भव में मोक्ष जाने वाले हैं, तत्काल मोक्ष नहीं जाने वाले। तो उस समय मल्लिनाथ भगवान का जीव भी वहीं पर था, लेकिन मल्लिनाथ भगवान का जीव अपनी आयु पहले पूर्ण करके भरत क्षेत्र में उत्पन्न होकर अपनी आयु में जो 55,000 वर्ष की उनकी आयु थी उस समय, 100 वर्ष की आयु में बिल्कुल दोनों अपराजित विमान से आए, नेमिनाथ भगवान और मल्लिनाथ भगवान, और दोनों के जीवन में वैराग्य की घटना लगभग मिलती जुलती है। तो जब आए थे वो तो 24 में से लगभग 20 तीर्थंकरों की जो जन्म तिथि है वही दीक्षा कल्याणक की भी तिथि है। ऋषभदेव महाराज कैसे उनको वैराग्य हुआ आप सभी जानते हैं। अब कोई पूछे कि भाई ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व धारण करने वाले महापुरुष प्रथम तीर्थंकर क्या हमेशा नाच गानों में मस्त रहते थे, तो उसका उत्तर है कि उनके पास सारे सांसारिक सुख रहते थे और देवता भी उनका मनोरंजन करने के लिए सेवा में हाजिर रहते थे, लेकिन नीलांजना का नृत्य उनकी जन्म जयंती पर विशेष रूप से आयोजित किया गया था और जानबूझ करके इंद्र ने उस अप्सरा को चुना था जिसकी आयु कुछ क्षणों की बची थी। और फिर उस घटना में उन्होंने पकड़ लिया सार को और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया। तो जब मल्लिनाथ भगवान का जीव अपराजित विमान से यहाँ पृथ्वी पर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और माता प्रजापती के गर्भ से 16 स्वप्ने देख करके जब उत्पन्न होकर पंच कल्याणकों को प्राप्त हुआ, जब शुरू के 2 कल्याणक तो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तो घर पर हो जाते हैं, दीक्षा कल्याणक बाहर होता है, केवल ज्ञान कल्याणक जहाँ पर घातिया कर्मों का क्षय करते हैं वहाँ पर होता है, और मोक्ष कल्याणक निर्वाण भूमि पर होता है। तो मल्लिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए, समेत शिखर जी से। तो उनकी वैराग्य का कारण क्या बन गया होगा, 100 वर्ष की उम्र थी उस समय उनकी, और 100 वर्ष की उम्र में जब वो विवाह संबंध पिताजी द्वारा तय कर दिया गया था, वो जा रहे थे बारात लेकर के, जैसे नेमिनाथ स्वामी जा रहे थे बारात लेकर के जा रहे थे, तो जिस नगरी में उनका विवाह संबंध हुआ था तो वहाँ पर जैसे प्रवेश होने को थी पूरी बारात, तब वहाँ दूर से जो जिनालय थे और जिनालय के ऊपर लहराने वाले ध्वजाएँ थी उनको इन्होंने देख लिया अपने रथ पर बैठे बैठे मल्ली कुमार, और देखते ही साथ इनको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण क्या हुआ कि मैं जिस अपराजित विमान में अहमिंद्र था वहाँ के जिन मंदिरों में भी ऐसी ही ध्वजाएँ लहराती थी, और जैसे ही जाति स्मरण होता है तो ख्याल आता है कि 33 सागर तक मैंने निरंतर भावना भाई है कि मनुष्य बनकर मैं तपस्या करूं, मनुष्य बनकर मैं तपस्या करूं, मनुष्य बनकर मैं तपस्या करूं। और आज मैं शादी करने जा रहा हूं, कहां वो देव पर्याय है जहां मैं मनुष्य बनने के लिए तरसता था, और कहां यह मनुष्य पर्याय जहां मैं विषयों में फंसने जा रहा हूं। सारथी से कह दिया कि रथ को मोड़ दो क्योंकि अब मेरा मन मुड़ चुका है, मन को मोड़ना पहले आवश्यक है, तभी जीवन मुड़ता है। जीवन अगर कोई पहले मोड़ दे, मन न मुड़ा हो, तो फिर स्थिति जो बनती है वो न इधर के न उधर के, वो वाली स्थिति बनती है। तो वैसी स्थिति नहीं। यहां तो उन्होंने बोला मेरा मन मुड़ चुका है, रथ को मोड़ दो। बोले सारथी तो आदेश का पालक था, रथ मोड़ दिया। अनुप्रेक्षाओं का उन्होंने चिंतन किया, लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी स्तुति की और उन्होंने वहीं पंचमुष्टि केश लौंच करके परिग्रहों का विमोचन कर दिया, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लिया, जिस मुद्रा को जिन मुद्रा कहते हैं, अरहंत मुद्रा कहते हैं। और फिर मल्लिनाथ भगवान के वैराग्य की तो अनूठी महिमा है। उन्होंने एक आहार लिया दीक्षा के बाद, तेला का नियम लेकर के, माने तीन उपवास करने के बाद एक आहार लिया और फिर तीन उपवास का नियम ले लिया, लेकिन वो उपवास पूर्ण नहीं हो सके। उनका छद्मस्त काल पूर्ण हो गया, यानी उन्होंने घातिया कर्मों का 6 दिन में क्षय कर दिया। दीक्षा 11 को हुई थी और दूज को केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। और कोई तीर्थंकर इस मामले में मल्लिनाथ भगवान की बराबरी में नहीं ठहरते। सब तीर्थंकरों के काल भिन्न भिन्न है। सबसे अधिक काल आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष का समय लगा था। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने में उनको लगभग 1000 वर्ष काल बीत गया था। फिर उनसे कम सुमतिनाथ भगवान को समय लगा था, पर वैसे तुलना करो तो बहुत कम था वो, 20 वर्ष। अभी हमारी दीक्षा को 20 वर्ष होने वाले उन्होंने 20 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बहुत बड़ी बात है। अभी तो सिर्फ सपना है केवल ज्ञान अपने लिए। अपना तब होगा केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, अभी तो सपना है। फिर उनसे कम 18 वर्ष अभिनंदन भगवान को लगे थे, चौथे तीर्थंकर। उनसे कम 16 वर्ष शांति कुंथु अरनाथ, तीनों भगवंतों को। फिर 9 वर्ष सुपार्श्वनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान को, 4 वर्ष पुष्पदंत भगवान को, 3 वर्ष शीतलनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान को, 2 वर्ष श्रेयांसनाथ, श्रेयोनाथ जिनको बोलेंगे संस्कृत में, श्रेयोनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान को, 1 वर्ष का समय वासुपूज्य भगवान और धर्मनाथ भगवान को लगा था केवल ज्ञान प्राप्त करने, 11 महीने मुनि सुव्रत भगवान को लगे थे, 6 महीने पद्मप्रभ भगवान को, 4 महीने पार्श्वनाथ भगवान को, 3 महीने चंद्रप्रभ भगवान को और 56 दिन, वैसे 12 वर्ष का जो समय था महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान को लगा था, 14 वर्ष का समय संभवनाथ भगवान को लगा था, 56 दिन नेमिनाथ भगवान को लगे थे केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मतलब आज से 56 दिन पहले, वैसे केवल ज्ञान की तिथि अलग है, आज की तिथि नहीं, आज तो दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक की तिथि। तो इतना इतना समय लगा था, इसका मतलब ये आज के बाद अगर गिनना चालू करो तो 56 दिन के बाद नेमिनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक की तिथि आती है। और मल्लिनाथ भगवान को मात्र 6 दिन लगे थे, यानी नेमिनाथ भगवान से भी 50 दिन कम हो गए पूरे 24 तीर्थंकरों के काल। एक बार देखना है, देख लो एक झलक। 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान, 12 वर्ष अजितनाथ भगवान, 14 वर्ष संभवनाथ भगवान, 18 वर्ष अभिनंदन नाथ भगवान, 20 वर्ष सुमतिनाथ भगवान, 6 महीने पद्मप्रभ भगवान, 9 वर्ष सुपार्श्वनाथ भगवान, 3 महीने चंद्रप्रभ भगवान, 4 वर्ष पुष्पदंत भगवान, 3 वर्ष शीतलनाथ भगवान, 2 वर्ष श्रेयनाथ भगवान, 1 वर्ष वासुपूज्य भगवान, 3 वर्ष विमलनाथ भगवान, 2 वर्ष अनंतनाथ भगवान, 1 वर्ष धर्मनाथ भगवान, शांति कुंथ अरनाथ भगवान 16 वर्ष, फिर मल्लिनाथ भगवान 6 दिन, मुनि सुव्रत भगवान 11 महीने, नमीनाथ भगवान 9 वर्ष, नेमीनाथ भगवान 56 दिन,